परमात्मा का नेटवर्क कभी जाम नहीं होता। 11 सितंबर को जनाचार्य श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब ने फरमाया कि जिंदगी में दो लोगों से सदा दूर रहिए, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी आदमी आपको अपनी मर्जी से टाइम देगा, घमंडी आदमी अपने मतलब से टाइम देगा। ये दोनों आपका सहयोग नहीं करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी व्यक्ति कौन है? परमात्मा, जिनके साथ अनंत लोग लगे हैं। लेकिन उनकी भक्ति दिल से की जाए तो वो कितने भी व्यस्त हों आपके साथ अवश्य जुड़ेंगे। उनका नेटवर्क व्यापक है। आप देखते होंगे कई बार आपके फोन रुक जाते हैं, नेटवर्क जाम हो जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में जब एक सिम से भी अधिक फोन जाने लगते हैं तो वह रास्ता बिजी हो जाता है। लेकिन परमात्मा अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति के धारक हैं, उनका नेटवर्क कभी जाम नहीं होता है। इसलिए भक्ति करनी है तो अरिहंत सिद्धों की। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र बन चुके हैं जो आपकी सोच को पकड़ते हैं। आपके दिमाग के साथ मशीन फिट करके आपको कंप्यूटर के सामने बिठाकर सोचने के लिए कहा जाएगा। जो आप सोचोगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। हाथ के इशारे से बल्कि आंख के टिमटिमाने मात्र से मोबाइल और बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगी है। आवाज करने से तो क्या नहीं हो सकता है, अब तो सोचने मात्र से हो रहा है। अतः प्रभु की भक्ति में आपका मन दिल प्राण लग जाए तो आप स्वतः ही ऊर्जावान बनते चले जाएंगे। आपकी आत्मा को सदा के लिए ऊर्जावान बनाने के लिए यह साधना कराई जा रही है। एक बार निर्धारित दिनों तक पाठ करने पर हमारे प्राणों में अरिहंतों की प्रतिष्ठा होने लगेगी। वहीं हमारे दिल और दिमाग को सही दिशा में ले जाएगी, जैसा कि एकलव्य के साथ हुआ था। प्राण ठीक तो मन तन सब ठीक हो जाएंगे। जैन धर्म में मास्क का विधान उत्तरासन के रूप में आया हुआ है, लेकिन आप सुनते नहीं थे। अब कोरोना ने वो हालात कर दिए कि मास्क नहीं लगाया तो 2000 रुपये दंड के देने पड़ेंगे। यही स्थिति अन्य रोगों के लिए भी आनी है। आज की फिजिकली साइंस अब रिलीजन के आधार पर इलाज करने की स्थिति में है। आज के वैज्ञानिक सामायिक करना, प्रभु भक्ति, जाप करना सब बता देंगे। वो करें इससे पहले आप लग जाइए। लेकिन जब स्वयं के स्वार्थ पर टकराहट होने लगती है तो तथाकथित नेता, समाजसेवी, साधुओं को भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यादव कुमारों द्वारा द्वेपान ऋषि का अपमान पूरी द्वारिका के विनाश का कारण बना। हरिकेशी अनगार का जरा सा अपमान करने पर सभी ब्राह्मण कुमारों को खून की उल्टियां होने लगी थी। इसका शास्त्र गवाह है। हमने हमारे जीवन में एक बार यह अनुभव किया कि हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी महाराज साहब को उनके ही एक भक्त ने अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने की स्थिति में कुछ अनुचित शब्द बोल दिए। बस उस दिन के बाद वो व्यक्ति तन से, धन से, इज्जत प्रतिष्ठा सभी से गिरता चला गया। अंत में वापस आकर माफी मांगने पर ही सुधार हो पाया। अतः गुरु का अपमान हर क्षेत्र में एक भव ही नहीं भव भव पतन का कारण है। देवदूत द्वारा समझाने पर, यवनराज एवं उनके सैनिकों द्वारा अनसेंट कहने पर वृद्ध मंत्री ने बात संभाल ली और यवनराज को माफी मांगने के लिए तैयार कर लिया और माफी मांगने से वो बच गए। अतः बुजुर्गों के अनुभव का फायदा उठाए। पिताजी का सम्मान कैसे करना, यह पार्श्व कुमार जी के द्वारा पिता के प्रति किए व्यवहार से जाना जा सकता है। यवनराज का भाषा हल्की थी। स्पष्ट है कि तुच्छ व्यक्ति ही तुच्छ भाषा बोल सकते हैं। खानदानी व्यक्ति की भाषा उच्च, मधुर और शालीन होती है। अगर आपने सत्ता का घमंड किया तो समय आने पर अच्छे व्यक्ति भी आपका साथ छोड़ देंगे। बड़े व्यक्ति के सामने जब भी जाते हैं तो अहंकार छोड़कर जाना चाहिए। विनय और शालीनता के साथ जाने वाला ही सब कुछ पाता है। हमारा विरोध व्यक्ति से नहीं, अन्याय अनीति से होता है। महापुरुषों की भक्ति करने से उत्कृष्ट भाव आने पर तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन हो सकता है। धर्म प्रभावना, प्रवचन पश्चात प्रभावना का लाभ एस जैन सभा के महामंत्री श्री विपिन जैन के तरफ से दी गई। आज दिल्ली, हरियाणा, तलवाड़ा आदि कई जगहों से दर्शनार्थी गण गुरु दर्शन एवं प्रवचन श्रवण के लिए निरंतर पहुंच रहे। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ साधकों के जीवन का वर्णन आता है। इसी तरह राजा प्रदेशी का भी वर्णन है। ऐसे ही सुकरात, तुकाराम आदि भक्तों की भी कहानियां हैं। आप अपने आप में आ जाएं तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। उपसर्ग हर की साधना से पहले पार्श्वनाथ जीवन चरित्र भी आपके सामने चल रहा है। तीर्थंकरों का नाम लेना भी महालाभदायक है, तो हम तो तीर्थंकरों का जीवन सुन रहे हैं, वो शक्ति देगा ही। पार्श्वनाथ के गर्भ में रहते वामा देवी को रात्रि अंधेरे में भी अश्वसेन जी के पास से जाता सर दिख गया। उन्होंने उसे अलग कर दिया, यानी कि गर्भ में अवधिज्ञानी तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। उनके ज्ञान की आत्मा ने माँ की बुद्धि को भी अधिक प्रकाशित कर दिया। बच्चे का माँ पर असर होता है। यह चेलना महारानी के जीवन से जाना जा सकता है। चेलना जैसी सती को कोनिक जैसे पुत्र रूप दुश्मन आत्मा के गर्भ में आने से श्रेणिक के हृदय का मांस खाने की इच्छा हुई थी। आज भी ऐसी घटनाएं देखी जा सकती है। जो वस्तु माता कभी खाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन गर्भ के प्रभाव में खाने लगती है। इसी प्रकार माँ का प्रभाव गर्भ पर पड़ता है, जैसा कि अभिमन्यु पर पड़ा था। वो चक्रव्यूह का भेदन गर्भ में ही सीखा था। तब यहां तो वामा के गर्भ में पार्श्वनाथ तीर्थंकर स्वयं अवतरित हुए थे। जन्म लेने पर तो पूरे लोक में शांति का संचार हुआ। उनके शुद्ध परमाणु सभी जगह सुख बयार फैलाते हैं। तीर्थंकर न तो दूध पीते हैं न पढ़ने स्कूल जाते हैं, उनके अंगूठे में तीर्थंकर अमृत का संचार कर देते हैं, उसी से काम चल जाता है। अभिज्ञान होने से उन्हें अध्यापक से भी कई गुना अधिक ज्ञान होता है। यह हाल पार्श्व कुमार का था। एक दिन अचानक युद्ध की भेरी बजती है तो पार्श्व कुमार जी पिता के पास जाकर यवनराज को परास्त करने स्वयं युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं। वे चाहते थे कि उनके रहते पिताजी काम न करें, सुपुत्र का यही कर्तव्य होता है, सभी को शिक्षा लेने का प्रसंग है। पार्श्व कुमार के युद्ध के लिए जाते ही सौधर्मेंद्र ने अपने सारथी देव को दिव्य शस्त्र अस्त्र लेकर दिव्यर्थ के साथ प्रभु की सेवा में भेजा। देवता भी सीधा सहयोग नहीं करते, वो आपके पुरुषार्थ में साथ देते हैं। देवता चाहते तो यवनराज को एक ही झटके में परास्त कर देते, पर ऐसा न कर मानव का पुरुषार्थ जगाते हैं और परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। कुशस्थल के बाहर 7 मंजिल का भवन बना दिया गया, चारों तरफ विशाल सेना खड़ी हो गई। यवनराज को प्रेम से समझाने पार्श्व कुमार ने देवदूत भेजा। यह है सामनीति, जो काम प्रेम से हो जाए उसके लिए रक्तपात नहीं किया जाए। उपसर्ग देवता के द्वारा दिए जाते हैं, परिष्टो तिर्यंच मनुष्यों के द्वारा दिए जाते हैं। पार्श्वनाथ की भक्ति के साथ की गई साधना हमारे ऊपर आने वाले किसी भी प्रकार के संकट को टालने वाली बनती है। अतः भक्ति भी हो और साथ ही तप भी हो, तब से दैविक शक्ति भी झुक जाती है, तो इंसानी ताकत तो क्या चीज है। जब जब भी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को झुकाया तो अनशन करके ही झुकाया है। आप भी तप के महत्व को समझें। अब भी चतुर्मास चल रहा है, तेला अट्ठाई आदि जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करें। तप हो या कोई भी अच्छा काम हो, उसमें गुणगान और उपहार देकर सम्मान देना आगमिक परंपरा रही है। देवता ने अरणक श्रावक को दिव्य कुंडल दिए थे। श्रेणिक राजा से देवता मिले तो उन्हें दिव्य वस्त्र, दिव्य कुंडल और दिव्य हार दिए। कृष्ण वासुदेव को दिव्य भेरी दी। इस प्रकार देवता भी धर्म प्रभावना के लिए उपहार देते आए हैं। प्रवचन में प्रभावना तपस्वियों का सामायिक करने वालों का उपहार के साथ सम्मान की प्रभावना है। इसे लोभ कहकर धर्म कराने की बात कहकर हम तीर्थंकरों की एवं धर्म की अशातना करते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव ने तो यह घोषणा की थी कि जो सवेरे सवेरे भगवान अरिष्टनेमी भगवान का सबसे पहले दर्शन करेगा उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण वासुदेव के बेटे राजकुमार जी भी प्रभु के दर्शन के लिए उतावले हुए। यह सब प्रलोभन नहीं, एक ढंग से धर्म की प्रभावना है। आज के युग में बड़े बड़े व्यक्तियों को भी नाम की भूख होती है, उनको प्रशंसा चाहिए, अभिनंदन पत्र चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्या यह सब प्रलोभन नहीं है? ऐसा प्रलोभन बड़े बड़े व्यक्तियों को दिया जाता है, वो उन्हें दिखाई नहीं देता। और सामान्य सा उपहार जो शास्त्रीय परंपरा सम्मत है उसे ईर्ष्यावश गलत दिखाई देने लगता है। यह शोचनीय बात है, निष्पक्ष आगम प्रेमी चिंतकों के लिए सोचने वाली बात है। कई लोग प्रभावना न लेकर अपनी श्रेष्ठता बताना चाहते हैं, लेकिन वे प्रतिष्ठा ले रहे हैं, प्रशंसा ले रहे हैं, पद ले रहे हैं, यह सब भी तो प्रलोभन है। धार्मिक एवं समाज के कार्यों में भी इलेक्शन करा रहे हैं, अपनी जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं, दूसरों की कमियां बता रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तथाकथित नेताओं की दृष्टि में वो तो धर्म है, लेकिन प्रवचन में दी गई प्रभावना तपस्वियों का सम्मान उनकी आंख की किरकिरी बन रहा है। यह सब ईर्ष्यादद मानस का परिणाम है। अरणक श्रावक को धर्म में पक्का रहने पर देवता ने 2 दिव्य कुंडल दिए थे। कुब्जादासी को संत की सेवा करने पर स्वर्ग गोलियां दी गई, जिससे वह सर्वांग सुंदरी बन गई। उपहार देने लेने की परंपरा आगमकालीन समय से चली आ रही है। आज से 200 वर्ष पहले अहमदाबाद में संत को इतनी सी सूचना की गई कि पूज्य श्री दौलत राम जी महाराज साहब राजस्थान से इधर पधार रहे। संघ ने बहुत खुश होकर सूचनावाहक को 1200 रू दिए थे। आगमकालीन युग में बगीचे में तीर्थंकर के पधारने पर माली के सूचना देने पर राजा लोग कई बार इतने खुश होते हैं कि मुकुट छोड़कर सभी स्वर्ण आभूषण सूचनावाहक को दान दे देते थे। ऐसे 50 उदाहरण इतिहास और शास्त्रों में उपलब्ध है। तब कोई भी व्यक्ति प्रवचन की प्रभावना या तप प्रभावना करता है तो उस पर उंगली उठाना और संतों को बदनाम करना एक ढंग से अपने भव बढ़ाना है। स्वधर्मी सहयोग भी तो श्रावक लोग करते हैं, स्वधर्मी को ही विशेष क्यों? स्पष्ट है कि उन्हें अपने धर्म की ओर आकर्षित करना ही विशेष लक्ष्य है। भगवान महावीर ने तो श्रेणिक राजा को नरक टालने के लिए केवल दादी को संतों का दर्शन करने के लिए लाने की बात कही थी। श्रेणिक, तेरी नरक टल जाएगी अगर तुमने अपनी दादी को संतों का दर्शन करा दिया तो तेरी नरक टल जाएगी। ऐसे 50 उदाहरण इतिहास में भी हैं, शास्त्रों में भी हैं। उन्हें इग्नो करके प्रलोभन का नाम लेकर संतों को बदनाम करने वाले तथाकथित जैनी एक ढंग से कर्म बांधकर दुखों को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग कोयले की तरह होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए। धर्म प्रभावना। आज प्रवचन पश्चात प्रभावना का लाभ श्री राजेश जी जैन, सुजाता जी जैन परिवार की तरफ से था। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।